जापान पर सैनिक वर्ग के नेताओं का शासन। इसके अतिरिक्त अराजकता के इन वर्षों में ऐसे सशक्त नेताओं का उदय हुआ जिन्हें जापान को सशक्त केंद्र शासित राज्य बनाने, वहां पर विद्यमान गृह कलह को समाप्त करने तथा जापान का जो रूप आज दृष्टिगोचर होता है उसे संभव बनाने का श्रेय है। पूर्ववर्ती कुछ शताब्दियों के विपरीत अब उच्च कुल में जन्म लेना कोई विशेष महत्व की बात नहीं थी और योग्य एवं गुणी व्यक्तियों को मान्यता प्राप्त करने के अधिक अच्छे अवसर सुलभ थे। इसी समय सैनिक वर्ग के निम्न श्रेणी के सदस्यों का आविर्भाव हुआ जिन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। नोबुनागा, हिदयोशी और इएयासु इन तीन नायकों के हाथ में क्रमशः देश के शासन की बागडोर रही। इनमें से अंतिम शासक ने एक ऐसे प्रशासन का संगठन किया जो 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद तक प्रचलित रहा। इनमें से प्रथम नोबुनागा ने अपने पड़ोसियों के साथ चीरकाल तक सफलतापूर्वक युद्ध करने के पश्चात अपना शासन स्थापित किया और अपने आप को क्योतो का आधिपत्य घोषित किया। कुछ काल तक शोगुन के अधीन कार्य करने के पश्चात उसने उसे जड़ से उखाड़ फेंका। इसके बाद उसका अधिकांश जीवन अपने इस स्थिति को बनाए रखने के लिए युद्ध में व्यतीत हुआ। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका स्थान हिदयोशी ने ग्रहण किया। हिदयोशी जापान के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और कभी-कभी तो उसे जापान का नेपोलियन भी कहा जाता है। उसका जन्म एक अत्यंत साधारण परिवार में हुआ था, यहाँ तक कि वह समुराई योद्धा वर्ग की कोटि में भी नहीं आता था। इएयासु ने, जो किसी समय उसका शत्रु था, उससे मित्रता स्थापित कर ली और वह उसका मुख्य सहायक बन गया। जापान के इतिहास में हिदेयोशी का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जिसमें हम एक अत्यंत साधारण व्यक्ति को राज्य की सर्वोच्च सत्ता का स्वामी पाते हैं। पृष्ठ संख्या 36। देश पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के बाद हिदेयोशी ने देश का एकीकरण करने और अपने प्रभुत्व को बढ़ाने का कार्य अपने हाथ में लिया। वह जापान पर अपना आधिपत्य स्थापित करने मात्र से ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु उसने विदेशों में वाणिज्य तथा राजनीतिक विस्तार की दिशा में भी सोचना आरंभ किया। जापान के बिल्कुल साथ ही कोरिया लगा था। हिदयोशी ने उसे पराजित कर चीन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में इसका उपयोग करने की योजना बनाई। जापान ने कोरिया के रूप में इसका उपयोग करने की योजना बनाई। जापान के बिल्कुल साथ ही कोरिया लगा था। हिदयोशी ने उसे पराजित कर चीन पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में उसका उपयोग करने की योजना बनाई। जापान ने कोरिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और उसके साथ इतनी अधिक क्रूरता से पेश आया कि जापानियों के प्रति कोरिया वासियों के मन में हमेशा के लिए घृणा की भावना बैठ गई। इस आक्रमण में वे चीनियों से भी उलझे क्योंकि वे इस प्रायद्वीप को अपना एक अवराज्य समझते थे और साथ ही इस पर विदेशी राज्य के आधिपत्य को अपने सीमाओं के लिए खतरा समझते थे। इस दीर्घकालीन आक्रमण में उन्हें आंशिक रूप में ही सफलता प्राप्त हो सकी। अंततः हिदयोशी की मृत्यु के उपरांत इस प्रायद्वीप में जापानियों की शक्ति का ह्रास हो गया। इएयासु ने षड्यंत्र करके हिदयोशी के पुत्र को पदच्युत किया और स्वयं वहां का शासक बन गया। धीरे धीरे उसने कलह प्रिय सामंती सरदारों का दमन किया और वहां फिर से केंद्रीय प्रशासन की सत्ता स्थापित की। अध्याय 5, शोगुन तंत्र। इएयासु के राज्यारोहण 1603 ईस्वी से पैरी के आगमन 1853 ईस्वी तक। इएयासु द्वारा शोगुन तंत्र का पुनर्गठन। इएयासु के सामने इस समय विजित प्रदेशों के एकीकरण और उनकी तोकुगावा की अधीन सुरक्षित बनाए रहने के अधीन सुरक्षित बनाए रखने का महान कार्य था। इस कार्य को इएयासु तथा उसके उत्तराधिकारी पुत्र एवं पौत्र ने इतनी कुशलता से संपादित किया कि उनके परिवार का आधिपत्य लगभग 2.5 शताब्दी तक बना रहा और लगभग 2 शताब्दी से भी अधिक समय तक देश युद्ध की विभीषिका से दूर रहा। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई उपायों का सहारा लिया। सर्वप्रथम इएयासु ने अपने आप को शोगुन के पद पर नियुक्त करके 400 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम योरितोमो द्वारा संगठित सामंती सैन्य व्यवस्था के प्रधान पद पर अपने को सुदृढ़ कर लिया। उसने योदो में जहां आज टोक्यो स्थित है, अपने सैनिक राजधानी स्थापित की। यह स्थान उत्तर में राज दरबार से दूर था तथा मुख्य द्वीप के भौगोलिक केंद्र के अधिक निकट और उत्तर की ओर था, जहां से उसे अधिकांश सहायता प्राप्त होती थी। कालांतर में यह नगर उस द्वीप का सबसे बड़ा नगर बन गया। इसके किले तथा शोगुनों के आवास गृह की रचना अत्यंत भव्य और विशाल थी, और थोड़े से ही परिवर्तन के साथ इसे आधुनिक राजप्रसाद का रूप प्रदान कर दिया गया। ईयासु ने युद्धों के चारों ओर तोकुगावा परिवार के सदस्यों की सामंती जागीरें बना दी। सभी प्रमुख स्थानों पर उसने अपने विश्वस्त सरदारों की नियुक्त किया। शोगुन के प्रति उत्तरदायी अधिकारियों के प्रमुख शहरों में नियुक्त किया तथा क्योतो और येतो के मध्य स्थित मुख्य राजमार्ग की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की। जहां कहीं भी विक्षोभ की आशंका हुई, ईयासु ने वहां की जागीरों को बड़ी चतुराई से अपने परिवार के सदस्यों तथा वफादार सामंतों में बांट दिया। फलस्वरूप जो परिवार शोगुन पद की आकांक्षा करते थे, उनके निकट ही या उनके मध्य शक्तिशाली सामंती जागीर संगठित करके उसे किसी तोकुगावा परिवार के सदस्य के आधिपत्य में दे दिया जाता। इसके अलावा जिन सामंतों की वफादारी के विषय में कुछ संदेह होता, उन्हें दुर्ग बनाने अथवा अन्य बड़े बड़े निर्माण कार्यों के लिए बाधित करके उनकी निधि को सीमित कर दिया जाता था। सभी दाइमयो को येदो अपना घर बनाए रखने का आदेश था। प्रत्येक दाइमयो को अपने सदव्यवहार के प्रतीक स्वरूप अपने परिवार के कुछ सदस्यों को वर्ष के आधे भाग तक वहां बंधक के रूप में रहना पड़ता था, और बाकी आधे वर्ष में उन्हें स्वयं वहां रहना पड़ता था ताकि उन पर निगरानी रखी जा सके। डिप्टी गवर्नर, जो सीधे योदो के नियंत्रण में थे, सारे देश में फैले हुए थे और दाइमो पर एक और अंकुश का काम करते थे। सामंती जागीरदारों को अपनी जागीरों के प्रबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता थी। सामंती जागीरदारों को अपनी जागीरों के प्रबंध में पर्याप्त स्वतंत्रता थी तथा सर्वसाधारण को, जिसमें व्यापारी, कृषक और नगरवासी शामिल थे, अपने स्थानीय पारस्परिक मामलों में संघों, नगर के बड़े बूढ़े एवं गांव के मुखियों की सहायता से प्रबंध चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। सभी अधिकारी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी थे। उनमें अनुशासन प्रियता और आज्ञाकारिता की शर्तों की आदतों का विकास हुआ, जो पूर्ववर्ती आशिकागा के अंतिम दिनों में पाई जाने वाली अराजकता और अत्यधिक व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत थी। 19वीं शताब्दी के महान परिवर्तनों में अनुशासन का यह स्वभाव देश के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। राजा के परंपरागत पद को समाप्त नहीं किया गया, बल्कि सम्राट के पद की पूज्यता या पवित्रता को और अधिक ऊंचा उठाकर राजकीय मामलों में राजा के सक्रिय हस्तक्षेप पर बड़ी चतुराई से रोक लगा दी गई। उसकी दैवीय उत्पत्ति को विशेष महत्व प्रदान किया गया और उसे दैनिक प्रशासन के कार्यों तथा राष्ट्र के वास्तविक मामलों की चिंता से मुक्त कर दिया गया। उसके साथ संबंध मंत्रियों और एवं उसके परिवार के सदस्यों को छोड़कर कोई भी उसके निकट संपर्क में नहीं आ सकता था। अन्य कोई भी व्यक्ति उसके पवित्र चेहरे के दर्शन नहीं कर सकता था। उसे अपना समय अपने पूर्वजों की पूजा तथा उनसे राष्ट्र के लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करने में व्यतीत करना पड़ता था। अभी तक राज्य का पूर्ण सत्ताधिकार उसी में निहित था, और सिद्धांत रूप में शोगुन उसके मात्र सेवक थे। उसे राज्य की ओर से उचित एवं पर्याप्त राशि व्यय के लिए दी जाती थी, और उसे कोरी सम्मान सूचक उपाधि प्रदान करने का अधिकार था। पुराने नागरिक या राज दरबारी अभिजात वर्ग को कायम रखा गया तथा इसकी पुनीतता को और अधिक बढ़ा दिया गया, परंतु इन्हें आजीविका के लिए अत्यंत धनराशि मिलती थी तथा इनका सक्रिय रूप से प्रशासन में जरा भी हाथ न था। सम्राट के मुख्य अधिकारियों का कार्यकाल एवं नियुक्ति यथार्थतः वाकूफू द्वारा नियंत्रित होती थी। सम्राट एवं राजदरबारी अभिजात वर्ग को प्रदान की जाने वाली धनराशि का स्रोत स्वतंत्र जागीरें न होकर यही वाकूफू संगठन था। कहीं राजा प्रशासन को अपने नियंत्रण में न ले ले, इसको ध्यान में रखकर क्योतो के चारों ओर सामंती जागीरें स्थापित कर दी गई थी, जो ऐसे ऐसे सैनिक सामंतों के आधिपत्य में थी जिन पर तोकुगावा प्रशासन का विश्वास था। इसके साथ ही क्योतो के निकट ओशाका बंदरगाह पर शोगुन का सीधा नियंत्रण था। समाज के सभी वर्ग सामान्य एवं सुस्पष्ट विधि नियमों द्वारा सुनियंत्रित होते थे। राजदरबार, अधिपति सामंतों, योद्धाओं और सर्वसाधारण के कार्यकलाप, वेशभूषा तथा आहार सुनिर्धारित थे। प्रशासन के विस्तृत पर्यवेक्षण व्यवस्था तथा विक्षोभ समाप्त प्राय हो चुका था। शिक्षा पुस्तकों का प्रकाशन और विशेष रूप से चीनी कन्फ्यूशियसी विद्वानों की रचनाओं के अध्ययन व प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया गया ताकि नागरिक एवं व्यक्तिक सदाचार को स्थायित्व प्रदान किया जा सके और व्यवस्था कायम रखी जा सके। इसके बाद के शोगुनों ने व्यापारियों एवं कृषक वर्ग के हित के लिए कानून बनाए तथा सार्वजनिक निर्माण कार्य किए। इन कार्यों के मूल में संभवतः यही भावना निहित रही होगी कि यदि देश में समृद्धि हुई तो देश से अशांति और अव्यवस्था स्वयमेव समाप्त हो जाएगी। ईसाइयत का दमन। इयास तथा उसके उत्तराधिकारियों ने ईसाइयत का बहिष्कार कर तथा बाह्य जगत के साथ अधिकांश संपर्क समाप्त कर राष्ट्र का एकीकरण किया। इससे पूर्व ईसाई धर्म के दमन के जितने भी प्रयत्न हुए वे ईसाई धर्म के प्रसार को रोकने में सफल नहीं हुए। विदेशी धर्म प्रचारकों ने प्रचार कार्य जारी रखा और यहाँ के अनेक आदिवासी जो मुख्य रूप से क्यूसू तथा साम्राज्य के अन्य दक्षिणी भागों के थे और जिनकी कुल संख्या लगभग 6 लाख थी, ईसाई बन गए। इयोयासु अपने शासन के आरंभ काल में ईसाइयत का विरोधी नहीं था, बल्कि अनेक अवसरों पर उसने ईसाइयत का समर्थन भी किया। इसमें उसका कोई धार्मिक उद्देश्य नहीं था, केवल वाणिज्यिक दृष्टि से ही उसने ऐसा किया। वह यूरोप तथा पूर्वी एशिया के साथ व्यापार आरंभ करने तथा उसको बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील था। वह कुछ वर्षों तक मैक्सिको के जरिए स्पेन के साथ वाणिज्यिक संबंध बनाए रहा और उसने डच तथा ब्रिटेन के लोगों को दक्षिण में अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित करने की अनुमति दे दी। शोगुन की ओर से विरोध न होने के कारण जापानी व्यापारी व्यापार के लिए फिलीपीन द्वीप समूह, अन्नाम, श्याम, चीन तथा भारत की ओर बढ़े। ईयासु जापान में अपने व्यापारिक जहाजी बेड़े का विकास तथा वहां पर खान उद्योग आरंभ करना चाहता था। धीरे धीरे उसकी विचारधारा में परिवर्तन आ गया और बाद में वह ईसाइयत का विरोध करने लगा। इस विषय में उसके उत्तराधिकारी और भी अधिक उग्र रहे। वे ईसाइयत को देश से निकालने मात्र से ही संतुष्ट न हुए अपितु तो उन्होंने बाह्य जगत के साथ अपने देश का संपर्क लगभग पूर्णतः तोड़ दिया। इस नीति के पीछे निहित समस्त कारणों का पता लगाना तो कठिन है, परंतु कुछ अस्पष्ट कारण यहाँ दिए जाते हैं। जापान द्वारा यूरोप में भेजे गए एक राजदूत ने इस विदेशी धर्म की अपने मूल भूमि में जो अवस्था देखी उसका उसने अत्यंत निराशाजनक चित्र खींचा। एक जहाज के विध्वंस के बाद बचे एक अंग्रेज लेखक ने कैथोलिक धर्म का इतिहास बहुत ही भद्दे रूप में चित्रित किया। स्पेन और पुर्तगाल के धर्म प्रचारकों का प्रचार कार्य राजनीतिक आक्रमण का उपक्रम मात्र है। शोगुन के विरुद्ध किए गए एक ईसाई षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ। इसमें एक फ्रांसीसी मतानुयायी पादरी ने शोगुन पद की अवहेलना की। विभिन्न धर्म प्रचारकों संस्थाओं में परस्पर अत्यधिक कलह और वैर भाव था। इन धर्म प्रचारकों में विशेष रूप से जेसुइट प्रचारक वहां के नागरिक अधिकारियों के बजाय अपने मत के वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा का पालन करते थे। उनकी यह प्रवृत्ति शोगुनों को पसंद न थी, जो देश के संपूर्ण सत्ताधिकार को अपने हाथ में केंद्रित करके आंतरिक स्थिरता लाने के लिए प्रयत्नशील थे। स्पेन के व्यापारी जहां एक ओर डच लोगों को जापान के व्यापार से बाहर रखना चाहते थे, वहां दूसरी ओर डच लोग अंग्रेजों को हटाने के लिए प्रयत्नशील थे। सन 1614 ईस्वी में इयासु ने सभी विदेशी पादरियों को देश से बाहर निकालने, सभी गिरजाघरों को नष्ट करने तथा सभी जापानी ईसाइयों को ईसाइयत त्यागने का आदेश दिया। ईसाई धर्म प्रचारकों ने जापान छोड़कर बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। इससे इयासु का ईसाई धर्म प्रचारकों को देश से खदेड़ बाहर करने का इरादा और भी दृढ़ हो गया। इस समय वे इधर उधर छिप गए या कुछ समय के लिए देश से बाहर चले गए और फिर लौट आए। देश में शांति एवं एकता की स्थापना इयासु का प्रमुख ध्येय था और वहाँ के शासन के प्रति इन धर्म प्रचारकों का यह उपेक्षा भाव इस उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक था। अपने इस दमन नीति की को पूरी तरह कार्यान्वित करने से पूर्व ही इयासु की मृत्यु 1616 ईस्वी में हो गई। उसके वंशजों ने उसकी ईसाइयत विरोधी नीति को और अधिक दृढ़ता से कार्यान्वित किया। ईसाई प्रचारकों का जापान में आने का क्रम जारी रहा और बहुत से जापानी ईसाइयों ने ईसाइयत को छोड़ने से इनकार कर दिया। इनकी इस अवज्ञापूर्ण हठधर्मी ने शोगुनों के भय को और पुष्ट किया। ऐसा प्रतीत होने लगा कि तोकुगावा परिवार की प्रतिष्ठा तथा शक्ति खतरे में है। येदो के संत्रस्त सरदारों को तो यह भी संभावना दिखाई देने लगी कि कहीं जापान की स्वतंत्रता भी खतरे में ना पड़ जाए। जापान में ईसाइयत पर रोक लगाने का प्रमुख कारण धार्मिक न होकर राजनीतिक था। रोम साम्राज्य के आरंभ काल के समान ही यहाँ भी ईसाइयत का अभिप्राय राजद्रोह समझा जाता था। ईसाइयत का उन्मूलन करने के लिए अत्यधिक कठोर कदम उठाए गए। हजारों की संख्या में धर्म प्रचारकों एवं धर्मांतरित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और नए धर्म को त्यागने से इनकार करने वाले लोगों को मौत के घाट उतारा गया और कुछ की तो बहुत ही निर्दयता से हत्या कर दी गई। इन शहीदों की निर्भीकता देखकर तोकुगावा अधिकारियों के भय को और अधिक पुष्टि मिली और उनका निश्चय और भी दृढ़ हो गया। अंत में सन 1638 में अवशिष्ट ईसाइयों ने संगठित रूप में शासन के विरुद्ध विद्रोह किया और नागासाकी के पास एक पुराने किले में आखिरी मुकाबला किया। सरकारी सेना ने विद्रोहियों का पूर्णतः संहार कर दिया और ईसाई धर्म का जापान से लोप हो गया। 19वीं शताब्दी के पूर्व तक इनके विरुद्ध सख्ती से कानून लागू किए जाते रहे। सभी देशवासियों के लिए बौद्ध मंदिरों में अपने नामों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया। सभी जापान वासियों को बौद्ध धर्म की किसी न किसी शाखा के प्रति निष्ठा रखने पर बाधित किया गया और जिनकी निष्ठा पर संदेह होता उन्हें तलवार की नोक पर ईसाइयत का परित्याग करने को मजबूर किया जाता। इसके बाद केवल एक दो दूरवर्ती नगरों में ही गुप्त रूप से ईसाई धर्मावलंबी बचे रहे। जापान द्वारा विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध। ईसाइयों के प्रतिरोध के कारण शोगुनों के मन में संपूर्ण विदेशी व्यापार के प्रति संदेह की भावना पैदा हो गई। कुछ समय तक तो स्पेन तथा पुर्तगाल के साथ वाणिज्यिक संबंध जारी रखने का प्रयत्न किया गया, परंतु जैसे जैसे ईसाइयत का दमन तीव्रतर होता गया और धर्म प्रचारकों का राष्ट्रीय जहाजों पर आने का क्रम जारी रहा, येदो स्थित अधिकारियों ने स्पेन और पुर्तगाल के साथ सभी प्रकार का व्यापारिक संबंध तोड़ देने का निश्चय किया। सन 1640 ईस्वी में जब पुर्तगालियों ने व्यापार आरंभ करने का प्रयत्न किया तो उनके संदेशवाहकों को जान से हाथ धोना पड़ा। जापान पर बाहरी विप्लवकारी प्रभाव न पड़ने देने के लिए जापानियों को देश से बाहर जाने की मनाही कर दी गई। इस आदेश की उपेक्षा करके जो लोग बाहर चले गए उन्हें लौटने पर प्राण दंड दिया गया। समुद्र पार व्यापार के लिए बड़े बड़े जहाजों के निर्माण पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ वर्षों तक अंग्रेजों ने वहां अपनी व्यापारी चौकी कायम रखी, किंतु मुनाफा न होने के कारण इसे बंद कर देना पड़ा। बाद में उन्होंने पुनः वाणिज्य आरंभ करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिल सकी। यूरोप के देशों में से केवल डच लोगों को ही व्यापार के लिए जहाज भेजने की इजाज़त थी। इन्हें अपने प्रोटेस्टेंट मत के प्रसार की अपेक्षा व्यापार से होने वाले लाभ में अधिक रुचि थी। यहाँ तक कि उन्होंने जापानी ईसाइयों से मुक्ति पाने के प्रयत्न में तोकुगावा अधिकारियों की सहायता भी की। इसलिए वहाँ के प्रशासन को अन्य बाह्य देशों के लोगों की अपेक्षा इनसे कम भय था, लेकिन चूंकि वे ईसाई थे इसलिए योदो के संत्रस्त अधिकारियों का उन पर संदेह करना अस्वाभाविक न था। उनके साथ व्यापार के कारण देश का धन राष्ट्र से बाहर जाता था, इसलिए धीरे धीरे उन पर भी अधिकांश प्रतिबंध लगाया जाने लगा और अंततः व्यापार के लिए उनका क्षेत्र केवल एक नागासाकी बंदरगाह तक ही सीमित कर दिया गया। उनके व्यापारियों की गतिविधियों को केवल एक छोटे से द्वीप तक सीमित रखा जाता था और उन्हें वहां सार्वजनिक रूप से किसी प्रकार की धार्मिक उपासना की अनुमति नहीं थी। वहां वर्ष भर में केवल दो चार जहाज ही आ सकते थे और अंत में उनकी संख्या भी घटाकर केवल एक कर दी गई। साल में केवल एक बार ही कोई डचवासी जापान आ सकता था और शोगुन के प्रति सम्मान प्रदर्शन के लिए कड़े पहरे में भी योदो के लिए प्रस्थान कर सकता था। उनके साथ व्यवहार के प्रति विस्तृत नियम बनाए गए थे। यहाँ का व्यापार इतना अधिक लाभप्रद था कि अत्यधिक अनादर के बावजूद भी डच लोगों ने कई वर्षों तक जापान में व्यापार जारी रखा। वे यहाँ रेशम और कपड़े के थान लाते थे और उनके बदले में सोना और तांबे ले जाते थे। यूरोप में इनको बेच कर वे खूब मुनाफा कमाते थे। इसे हम अपवाद ही कह सकते हैं, अन्यथा जापान में पश्चिमी प्रभाव के प्रवेश के लिए द्वार पूर्णतः बंद कर दिए गए थे। यह ऐसा समय था जब जापान ने 2 शताब्दियों से भी अधिक काल तक पूर्णतः एकांतित जीवन अपनाया। इस समय डच व्यापारियों के माध्यम से कुछ पश्चिमी विचार अवश्य जापान में प्रविष्ट होते रहे। इधर चीन भी जापान के साथ सुनियमित रूप से एक तरफा व्यापार बनाया था। जापान के ही समान चीन ने भी अपने देश में यूरोपीय तत्वों के लिए द्वार बंद कर रखे थे। पृष्ठ संख्या 43, पार्थक्य का परिणाम। अंततोगत्वा तोकुगावा संगठन जापान में आंतरिक एवं बाह्य शांति स्थापित करने में सफल हुआ। शताब्दियों से चली आ रही अव्यवस्था और गृहकलह की इतिश्री हो गई, परंतु इस अवस्था में अपने ही विनाश के बीज निहित थे। इस संगठित सैनिक सामंतवाद का उद्भव और उद्देश्य ही सामरिक था। अब इसकी पूर्ण शक्ति युद्ध रोकने और आंतरिक शांति को प्रोत्साहित करने में लगी थी। इसका ह्रास अवश्यंभावी था। इस शांति काल में देश में महान परिवर्तन हुए। 7वीं शताब्दी के बाद प्रथम बार जापान एक संगठित इकाई का रूप धारण कर रहा था। तोकुगावा पद्धति के कारण जापान परस्पर विरोधी परिवारों के एक समूह के बजाय एक राष्ट्र के रूप में कार्य करने लगा। इसमें संदेह नहीं कि सामंतवाद के विभिन्न स्वरूपों को कायम रखा गया और सामंती जागीरों का अस्तित्व भी बना रहा। इससे पूर्ण रूप से राष्ट्र का एकीकरण नहीं हो सका था, परंतु राष्ट्र के विभाजनकारी तत्वों की शक्ति छिन्न होती गई। यद्यपि वाकूफू ने कोई अधिक विस्तृत विधान व्यवस्था नहीं की, लेकिन इसने एक ऐसी नियम प्रणाली प्रकाशित की जिससे प्रजा के कार्यों में नियमितता आ गई। प्रजा में केंद्रीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए कानूनों को पालन करने का स्वभाव विकसित होने लगा। इसके अलावा राष्ट्र भी अधिक संपन्न हो रहा था। व्यवस्था स्थापित हो जाने के कारण कृषक एवं कारीगर अपने व्यवसाय में निशंक होकर प्रगति कर सकते थे। राज्य की ओर से कृषि को प्रोत्साहित किया गया और सिंचाई की व्यवस्था राज्य ने अपने हाथों में ले ली। भूमि पर कृषकों के स्वामित्व में वृद्धि हुई। गांवों में स्वायत्तता शासन को प्रोत्साहित किया गया तथा सड़कों की अवस्था में सुधार हुआ। आंतरिक वाणिज्य में वृद्धि हुई। अब सैन्य सरदारों का ध्यान युद्ध कला से शांतिकालीन आमोद प्रमोद की ओर गया। इसके साथ ही विलासिता का प्रादुर्भाव हुआ और खर्चीले आमोद प्रमोद, वेशभूषा, खान पान तथा रहन सहन की पद्धतियाँ बहुत अधिक लोकप्रिय हो गई। उच्च वर्ग के लोगों की इच्छा पूर्ति व्यापारी वर्ग के लोग करते थे, जो धीरे धीरे धनी बनते गए। वाणिज्यिक पूंजी में वृद्धि हुई और मुद्रा प्रणाली में सुधार किया गया। यद्यपि यदा कदा अकाल और महामारी का प्रकोप होता रहता था, परंतु फिर भी आबादी में वृद्धि होती गई। गरीबी बहुत कम हो गई थी और शहरों में पश्चिम की तरह गंदी बस्तियों का अभाव था। शिक्षा का प्रसार काफी बड़े पैमाने पर हुआ और साहित्य तथा कला ने प्रगति की। राजधानी तथा दाइमयो यानी सामंतों के क्षेत्रों में नए शिक्षायतन खोले गए। फलस्वरूप उजड़ सैनिकों के पुत्र पढ़ लिख गए। जनसाधारण के लिए सभा भवन स्थापित किए गए। चीन के श्रेष्ठ साहित्यकारों की कृतियों का काफी अधिक अध्ययन किया जाने लगा। जापान के इतिहास में पहली बार काफी अधिक संख्या में कन्फ्यूशियस के कट्टर अनुयायी बने। कई शताब्दियों तक प्रत्येक पीढ़ी में अपने ही कन्फ्यूशियस मतानुयायी मानने वालों की थोड़ी बहुत संख्या अवश्य थी, परंतु इससे पहले चीनी विचारक के उपदेशों को इतनी अधिक लोकप्रियता कभी नहीं मिली। इस समय कन्फ्यूशियसी मत के अनेक व्याख्याता हुए और इसी समय विभिन्न मतों का उदय हुआ। अधिकांश उच्च वर्गों के लोग कन्फ्यूशियसी मतानुयायी हो गए। यद्यपि समझा यही जाता था कि वे बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, परंतु प्रायः खुले तौर पर वे इस भारतीय धर्म को अंधविश्वासपूर्ण एवं अशिक्षित जनता के योग्य ही समझते थे। राज्य की ओर से पुस्तकों के संग्रह के कार्य को प्रोत्साहित किया गया, इतिहासकारों को महत्व प्रदान किया गया और उन्हें राष्ट्र के अतीत का विस्तृत अध्ययन किया। चित्रकला और मृत्तिका शिल्प यानी चीनी की मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई। निम्न वर्ग के लोगों की रुचि के लिए दिन प्रतिदिन की वस्तुओं के रंगीन चित्र और लोकप्रिय साहित्य का विकास हुआ। इसी समय वास्तुकला की प्रख्यात कृतियों का सृजन हो रहा था। प्राचीन जापान अपने संस्कृति को परिष्कृत करने में संलग्न था। पुराना समुराई योद्धा वर्ग इस समय हरासोन्मुख था। यह सत्य है कि बुशिडो नीति संहिता को पहले से भी कहीं अधिक विस्तृत रूप प्रदान कर एक अधिकृत प्रणाली बनाया जा रहा था और सैनिक अभ्यासों और आदर्शों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। लेकिन फिर भी एक ऐसे सैनिक वर्ग का अस्तित्व असंगत प्रतीत होता था जिसका पोषण सारे राष्ट्र द्वारा किया जा रहा हो। और जिसे कई शताब्दियों से युद्ध न करना पड़ा हो। विलासिता के कारण सामंती सैनिकों की शक्ति छिन्न हो रही थी। प्राचीन काल में जिस प्रकार सम्राटों पर फ्यूजीवारा और बाद में शोगुनों का नियंत्रण रहता था, उसी प्रकार महान दाइमयो के उत्तराधिकारी भी अपने औपचारिक रक्षकों के नियंत्रण में आते रहे थे। यहाँ तक कि कभी कभी तो शोगुन भी अपने मंत्रियों से प्रभावित होकर कार्य करते थे। अध्ययन के लिए अधिक समय मिलने और वाकूफू का प्रोत्साहन प्राप्त होने के कारण स्वभावतः लोगों के चिंतन की दिशा अतीत की ओर गई। जापान के इतिहास का अन्वेषण हुआ और उसे संकलित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में जापान की वस्तुओं और आदेशों के प्रति प्रेम की भावना का उदय हुआ। भाषा का अध्ययन किया गया तथा उसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया। चीन के श्रेण्य साहित्य से भिन्न एक जापानी साहित्य का विकास हुआ। धर्म का पुनरुद्धार किया गया, जिसके फलस्वरूप जापान के अधिपति सम्राट को और अधिक आदर प्राप्त होने लगा। यद्यपि तोकुगावा ने ईसाई धर्म का उन्मूलन करने के प्रयत्न में बौद्ध धर्म को राजधर्म का दर्जा प्रदान किया गया, परंतु चूंकि यह भी एक विदेशी धर्म ही था, इसलिए कट्टर देशभक्त इसे भी संदेह की दृष्टि से देखते थे। राजनीतिक दृष्टि से इतिहासकारों की अधिक महत्वपूर्ण खोज यह थी कि राष्ट्र का न्याय सम्मत एवं उचित शासक सम्राट है और शोगुन तंत्र अपेक्षाकृत बाद की चीज है। विद्वानों के एक वर्ग में यह विचार जोर पकड़ता गया कि शोगुन को अपने पद का त्याग कर देना चाहिए और सम्राट को अपने उचित पद पर वास्तविक अधिपति के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाना चाहिए। सम्राट के पद के नवाप्त महत्व को पुनः स्थापित करना चीन के श्रेण्य साहित्य का मुख्य उद्देश्य था। जब तोकुगावा अधिकारियों ने इस साहित्य को प्रोत्साहित किया था, तो उन्होंने यह अनुभव नहीं किया था कि कन्फ्यूशियसी संप्रदाय की रचनाएं वाकूफू संगठन के लिए इतनी घातक सिद्ध होगी। चीन के श्रेण्य साहित्य ने सम्राट के पद की महत्ता पर जोर दिया, परंतु यह साहित्य जापान में प्रचलित द्वैध प्रणाली से अपरिचित था। इस प्रकार की आस्थाओं से शोगुन की स्थिति का छिन्न हो जाना स्वाभाविक ही था, क्योंकि इसके अनुसार शोगुन सम्राट का मंत्री मात्र था, जिसने अपने स्वामी के अधिकार का अपहरण कर लिया था। सम्राट को फिर से अपने पद पर स्थापित करने में दक्षिण की बड़ी सामंती जागीरों से सहायता की आशा की जा सकती थी, क्योंकि ये तोकुगावा की पूर्व प्रतिद्वंद्वी थी और कभी भी इस शासन से संतुष्ट नहीं थी। इसलिए इससे कम से कम उन्हें शोगुन के पद पर नए परिवार को स्थापित करने का अवसर तो प्राप्त होता। इस प्रकार जिसके शासनकाल में साहित्य के अध्ययन को इतना प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं उसी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। 19वीं शताब्दी में संभावित परिवर्तन। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल तक राष्ट्र परिवर्तन के लिए पूर्णतः तैयार था। पुरानी व्यवस्था ह्रासोन्मुख थी। तोकुगावा शोगुनों की शक्ति इतनी छिन्न हो चुकी थी कि धीरे धीरे उन पर उनके मंत्रियों का अधिकाधिक नियंत्रण होता जा रहा था। असंतोष और विक्षोभ के चिन्ह दिखाई देने लगे थे, क्रांति के लक्षण प्रकट होने लगे थे, परंतु बाह्य हस्तक्षेप के अभाव में क्रांति का क्या स्वरूप होता, यह कहना कठिन है। जापान जिस समय इतिहास के इस विचित्र संयोग काल में से गुजर रहा था, उस समय इसका संपर्क विस्तारोन्मुख पश्चिमी देशों के साथ हुआ, और इस संपर्क के परिणाम स्वरूप एक नए ही राष्ट्र का आविर्भाव हुआ।